नमस्कार।
बहुत बातें की हैं हमने माइंड की, मन की, लेकिन देखा जाए तो अभी भी हम कई रहस्य उसके नहीं जानते हैं। क्यों इतना महत्वपूर्ण है मन? कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो कैसे जीतना है इस मन को? क्या सचमुच इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे पूरे जीवन को निर्धारित कर सकता है? क्या है इससे जुड़े सारे रहस्य? हमें साथ मिला है विश्व प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा जी का। एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है माइंड, और मैटर भी करता है, पर कितना मैटर करता है? क्यों हमारा पूरा जीवन जो है इस माइंड के आसपास घूमता है?
जो मैं सोचता हूँ, जीवन का क्या लक्ष्य है, मेरे आसपास के संबंधों में, मेरे आसपास के वातावरण में, मेरे समाज में क्या हो रहा है, इन सब को जानने वाला, पहचानने वाला और उसके बारे में कुछ कर पाने वाला हमारा मन है। अगर मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारे जीवन को और पूरे समाज को खराब करने वाला भी मन है। और मन जो है उसकी शक्तियों को हम अगर ना पहचान पाए तो एक तरह से हम अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं।
क्या मन को समझ पाने की कोई टेक्निक है?
सिर्फ टेक्निक ही नहीं है, पूरी टेक्नोलॉजी है। मेरे ख्याल से आज के समय में हर व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में, और कंप्यूटर ना सही, एटलीस्ट सेलफोन के बारे में तो थोड़ा बहुत जानता ही होगा। हम किसी भी टेक्नोलॉजी को लें, उसमें एक हार्डवेयर है जो कि यहाँ पे अगर समझें तो हमारा शरीर है, उसमें एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे समझें तो हमारा मन है। यहाँ पे अगर आप इसकी शक्तियों को देखें मन की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम पैदा होते हैं तो किस कंट्री में पैदा हुए उसके हिसाब से वो ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, जापानीज में भी हो सकता है। स्क्रिप्ट हर किसी भाषा की अलग है, लेकिन हमारा मन उसको समझ पाता है। पावर जो उसको चला रही है वो सोल है, लेकिन डिसाइड करने की शक्ति, उसको महसूस करने की शक्ति, उसको स्टोर करके मेमोरी में रखने की शक्ति, अपने जीवन में हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी शक्ति, सही क्या है गलत क्या है वो माइंड की शक्ति, और हम अपने जीवन में कहां तक आगे लेके जाना चाहते हैं उसकी शक्ति। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि सिंपल से सिंपल कंप्यूटर को भी हम 5-10% से ज्यादा यूज नहीं करते, और अगर बहुत अच्छा हो तो शायद उससे भी कम यूज करते हैं। यहाँ पर जो मन की शक्तियां हैं वो अथाह हैं। जो हमारे हार्डवेयर है यहाँ पर, ब्रेन जिसको हम कहते हैं, उसकी भी शक्तियां अगर हार्डवेयर के हिसाब से भी देखें, जिसपे की मन काम कर रहा है और फिर उसके द्वारा पूरे शरीर पर काम कर रहा है, वो भी अथाह है। हमारे ब्रेन के अंदर, जस्ट टू गिव यू अ कंपैरिजन टू द हार्डवेयर, 10,000 करोड़ ब्रेन के सेल्स हैं, और हर सेल की और 10,000 सेल्स के साथ कनेक्शंस हैं। फेसबुक पे भी शायद किसी के इतने फ्रेंड्स नहीं होंगे, लेकिन हर सेल के उतने दोस्त हैं। तो 10,000 करोड़ × 10,000 करोड़ पॉसिबिलिटीज हैं। हर समय हर थॉट को एक चीज को ट्रांसलेट करने की,
ओह माय गॉड,
और हर क्षण वो चलता रहता है, नींद में भी चलता रहता है। टेक्नोलॉजी उसकी सबसे आसानी है कि हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और जो हम कर्म कर रहे हैं उसको समझ पाए, और उसके लिए जरूरत होती है 2 सेकंड पीछे हटने की, देखने की कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, और फिर उसको एक डायरेक्शन देने की।
मुझे लगता है मैं क्या चाह रहा हूँ, इंटेंशन ऑल्सो, यू नो, बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं है।
इंटेंशन इज द प्राइमरी फोर्स, क्योंकि जो मेरी इंटेंशन है अगर पॉजिटिव है तो सारी शक्तियां उसी डायरेक्शन में चल जाती है। डिस्ट्रक्शन की अगर इंटेंशन है तो सारी शक्तियां उसमें चल जाती है। ये पैकेजेस के रूप में आते हैं, एक वायरस का पैकेज है, एक एंटीवायरस का पैकेज। हम एक्चुअली उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है, सोच रहे हैं ना, जैसा भी सोच रहे हैं चलेगा, जो भी बोल रहे हैं चलेगा, दूसरे को हर्ट हुआ कोई बात नहीं, मैं जो भी काम कर रहा हूँ कौन देख रहा है, चलेगा जब तक मेरा काम बन जाए। तो हम धीरे धीरे इनसेंसिटिव होते जाते हैं अपने मन के प्रति, और फिर वो धीरे धीरे सुषुप्त होता जाता है। हम अगर उन शक्तियों को सामने लाकर किस प्रकार से उनको सही दिशा देकर काम करना है, तो वो एक टेक्नोलॉजी है। और वो टेक्नोलॉजी आमतौर पर ना तो मेडिकल साइंस में सिखाई जाती है, और मैं कह सकता हूँ कि मेडिसिन में नहीं सिखाई जाती, ना ही हम बचपन में अपने बच्चों को ये बातें सिखाते हैं, ना ही हम संबंधों में सिखाते हैं, ना ही जब मुझे नेगेटिव महसूस हो रहा है, चाहे थॉट्स हैं चाहे इमोशंस हैं, उस समय उसको कैसे ठीक करना है, इसके बारे में कहीं सिखाते हैं। तो अगर उनको सिखाया जा सकता है तो जो एग्जिस्टिंग मन है, चाहे जैसा भी है, चाहे बचपन में मेरे साथ जो भी हुआ, चाहे बाद में मेरे कैसे भी एक्सपीरियंसेस रहे, उन सबको ठीक भी किया जा सकता है। हर सेकंड हमारा मन नई नई तरह की मेमोरीज को क्रिएट करता है। सबसे वंडरफुल बात यह है कि हमारी मेमोरीज 5 dimensions, एक्चुअली 6th dimension इंक्लूडेड, डायमेंशन ऑफ इंट्यूटिवनेस, डायमेंशन ऑफ हायर पावर्स ऑफ थिंकिंग, जो 5 तत्व हैं, 5 senses हैं, उन सबको जो महसूस करने की, सुनने की, देखने की, टच की, टेस्ट की और स्मेल की, इन 5 चीजों को हम एक साथ ही होलिस्टिकली माइंड के अंदर फीड करते हैं। ये कॉन्शियसली भी होता है और सबकॉन्शियसली भी होता है। इन्हीं के साथ इमोशंस जुड़ी होती हैं। अगर मेरा पुराना इंटरेक्शन किसी के साथ अच्छा रहा तो उसके साथ एक पॉजिटिव इमोशन जुड़ गई, किसी के साथ एक बार नेगेटिव इंटरेक्शन हुआ, नेगेटिव जुड़ गई। अब ज्यादातर माइंड अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो चाहता है कि मैं नेगेटिव ना सोचूं, लेकिन ना सोचूं कहकर असल में उसी को सोच रहा होता। तो अगर हम एक नए सिरे से शुरुआत करें तो जैसा भी हुआ, अगर कोई बीमारी भी हुई, अगर कोई बहुत नेगेटिव इंटरेक्शन भी हुआ, इंसिडेंट भी हुआ, हम नए सिरे से उसको देखकर, उसको पीछे छोड़कर नई तरह की मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। और जितनी वो मेमोरीज बढ़ती जाएंगी, वो एक तरह से नए संस्कार क्रिएट होंगे, जिनको हम टेक्निकल भाषा में पर्सनालिटी ट्रेट्स कहते हैं, और उसकी वजह से एक नए व्यक्ति के रूप में हम उभर के आ सकेंगे। और जब मैं नए व्यक्ति के रूप में उभर के आता हूँ, मेरी सकारात्मक सोच है, मेरी सकारात्मक भावनाएं हैं, तो मेरे इंटरेक्शन भी सकारात्मक होंगे। कई बार हम जब इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो हम बाहरी चीजों में बात करते हैं, लेकिन अंदर क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं वो हम भूल जाते हैं।
और बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट,
सबसे ज्यादा पावरफुल वही इंटरेक्शन है, क्योंकि वही हर समय मेरे मन में चलते हैं। उसके ऊपर फोकस करके अगर हम उनको ठीक करना सीख जाएं, तो मेरा पास तो पीछे रह ही गया है, सचमुच में रह गया, क्योंकि वो मैं से कभी रिलिव नहीं करूंगा एक्सेप्ट इन माय माइंड। लेकिन फ्यूचर को मैं जरूर दूसरे तरीके से देखकर सशक्त रूप में बदल सकता।
यू बीन अ पार्ट ऑफ द मेडिसिन ऑल्सो एंड यू बीन पार्ट ऑफ द मेडिटेशन ऑल्सो, मेडिकेशन और मेडिटेशन दोनों को आपने आत्मसात किया है। तो क्या सिंगुलरली मेडिकेशन या मेडिटेशन, दोनों पर चलकर हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, या दोनों का साथ चाहिए हो सकता है?
साथ सिर्फ दोनों का ही चाहिए। अकेले रूप से हम कभी भी किसी चीज पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा और मन के साथ शरीर भी जुड़ा हुआ है। और अगर शरीर में कुछ चेंजेस आए हैं, हमारी बायोकेमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में चेंजेस आए हैं, तो उनके लिए हो सकता है हमें कुछ मेडिकल तरीकों का भी मदद लेनी पड़ सकती है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम लॉन्ग टर्म पे इम्प्रूवमेंट की बात करें, तो उसमें मन और आत्मा के बिना सिर्फ शरीर पर फोकस करके हम पूरी तरह से किसी भी प्रॉब्लम से, खासतौर पे बीमारियों से, ठीक नहीं हो सकते। पिछले कुछ दशकों से, आपने जो कहा कि हम इसके बारे में इतनी बात क्यों आज के समय में कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 20-25 वर्षों से अगर हम देखें तो समाज में बहुत बदलाव आए हैं, हम सब की आकांक्षाओं में बहुत बदलाव आए हैं। वी हैव ऑल वांटेड नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू डू द बेस्ट इन लाइफ, एंड टेक्नोलॉजी गिव्स अस दैट प्लेटफॉर्म। लेकिन कई बार हम उस टेक्नोलॉजी में गुम कर जो रिश्ते हैं अपने साथ, दूसरों के साथ, समाज की तरफ जो हमारे रोल्स हैं, या अपने जो हमारे अंदर के प्रोसेसेस हैं, जिनको पहले कुछ समय तक शायद हम पूजा में ही कह लीजिए या फेस्टिवल्स में ही कह लीजिए, खास तौर पे रिचुअल्स में ना फंस के अगर हम उसके एसेंस को पकड़ते थे तो हम उस चीज से जुड़े हुए थे। लेकिन आज के समय में वो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो परिवार का था चाहे वो समाज का था, वो धीरे धीरे ढीले होते गए हैं, टूटते जा रहे हैं, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी वजह से राइट फ्रॉम द टाइम कि कोई बच्चा माँ के गर्भ में है, माँ की स्थिति मन की कैसी है, उसका बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, उसके बाद परिवार का माहौल कैसा है, उसका बच्चे पे असर पड़ेगा, स्कूल का माहौल कैसा है, आपस में कितना कंपटीशन है, बच्चे पे कितना ध्यान दिया गया है, बच्चे को किसी तरह के अब्यूज का, फिजिकल सेक्सुअल उसका सामना करना पड़ रहा है, उसका बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। तो जो पहले कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो परिवार ही थोड़ा सा ठीक कर पाते थे, वो अब नहीं है। ज्वाइंट फैमिलीज थी, ज्यादातर उनके फायदे थे, अगर थोड़े बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको संभाल लिया जा सकता था, अब भी संभाला जा सकता। उनके क्या नुकसान हुए हैं जबकि ज्वाइंट फैमिलीज टूट रही हैं, माइग्रेशंस हुई हैं, हम सब की आकांक्षाएं बढ़ी हैं, उस कंपटीशन में एडोलेसेंट्स में क्या मुश्किलें आ रही हैं, किस वजह से उनकी टेक्नोलॉजी के साथ रादर देन रियल लाइफ वो जो विड्रॉ किए हैं। पहले एक जनरेशन 20 साल मानी जाती थी, फिर वो कम होकर 15 साल, फिर 10 साल, अब कहा जाता है कि हर 5 साल में जनरेशन चेंज हो रही है। एक्चुअली जनरेशन नहीं चेंज हो रही, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोगों से इंटरेक्शन करने के तरीके चेंज हो रहे हैं। और अब हमें धीरे धीरे पता लग रहा है कि जब आपकी रिलेशनशिप लोगों के साथ नहीं लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ है तो वो टू वे प्रोसेस नहीं है, वो मेरे माइंड को उस रूप में नहीं स्टिमुलेट करता, इमोशंस नहीं स्टिमुलेट करते, वो एक वन वे प्रोसेस है जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं गेम खेल सकता हूँ, मैं कंप्यूटर पर प्रोग्राम में जा सकता हूँ, लेकिन वो वन वे प्रोसेस है, इसलिए वो एक रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं हुई। और अगर हुई तो इतनी हुई कि हम उसी के बहाव में बह गए, तो वो जो बैलेंस बिगड़े हैं उनकी वजह से हमारे अंदर जो एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जो कोर वैल्यूज कई बार कहा जाता है रिलेशनशिप्स की, जिनमें एम्पथी, एक दूसरे की बात को महसूस करना, या रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टिंग माय सेल्फ, रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन, एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम फॉर माय सेल्फ, एंड देन मुझे अगर अंदर से अच्छा लगेगा तो मैं दूसरे का बात को रिस्पेक्ट करूंगा, उसकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाऊंगा। तो वो सारी चीजें जो थी, जो कि बिना कहे ही एक अच्छी रिलेशनशिप में नॉन एक्सपेक्टेंट वे में डेवलप हो जाती थी, वो इस समय नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द प्रॉब्लम
एक्चुअली। और वो भी समझ में आ रहा है कि सब कुछ बदलाव जो है उसे हम एक्सेप्ट करें, लेकिन जो इंटरेक्शंस हैं, जो रियल इंटरेक्शंस हैं, उन्हें जो है वो जीवन में लाए रखना है, और मन के साथ के जो एक रिलेशनशिप को है, क्योंकि बाकी के रिलेशनशिप बाद में आते हैं, पहला तो मेरा अपने आप से मेरा रिश्ता जो है, बार बार हम इसी पर बात करते हैं। तो मन के सारे रहस्य आपके साथ और मिलकर खोलते रहेंगे। थैंक यू सो मच आज की इस मुलाकात के लिए।